नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। महिला आरक्षण और परिसीमन पर केंद्रित संसद का विशेष सत्र शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर बाद लोकसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 और परिसीमन विधेयक 2026 पेश। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में ऑस्ट्रिया के चांसलर डॉ क्रिश्चियन स्टॉकर के साथ दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकानों का सूचीकरण और गणना का काम आज से शुरू। आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में आज सवेरे सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मुंबई इंडियंस का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। संसद के विस्तारित बजट अधिवेशन का 3 दिन का विशेष सत्र आज से शुरू हो गया है। ये सत्र 18 अप्रैल तक चलेगा। ये सत्र महिला आरक्षण और परिसीमन पर केंद्रित होगा। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 और परिसीमन विधेयक 2026 पेश किया। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयकों को पेश करते हुए श्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस दिन को ऐतिहासिक बताया और कहा कि सरकार महिलाओं को राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 महिलाओं के लिए समानता सुनिश्चित करेगा। विधि और न्याय मंत्री ने कहा कि देश भर में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का एक समान और कानूनी रूप से सुसंगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए लोकसभा में वर्तमान संख्या से 50% सीटों की वृद्धि करना आवश्यक होगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद लोकसभा में सदस्यों की संख्या 815 हो जाएगी। इनमें से 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जो मौजूदा आवंटन के अतिरिक्त है। श्री मेघवाल ने कहा कि इस फॉर्मूले से सुनिश्चित होगा कि किसी भी समूह को कोई नुकसान न हो और भविष्य में प्रत्येक राज्य की सापेक्षिक संख्या में बदलाव भी नहीं होगा।
ये अमृतकाल की बेला है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। 2047 में जब भारत की आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर विकसित भारत का उत्सव मनाया जाएगा, तब उसमें महिलाओं की भूमिका अग्रणी रहने वाली है। इसलिए मैं आज इस सदन के समक्ष सभी माननीय सदस्यों से ये निवेदन करता हूं कि इस बिल को सर्वसम्मति से पास कर हमारी मातृशक्ति को उनका अधिकार दिलाने के लिए अपना योगदान दें।
कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई ने विधेयक पर चर्चा शुरू करते हुए कहा कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन इसे सरल बनाया जाना चाहिए और परिसीमन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के तेजस्वी सूर्या ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि लगभग 4 दशक से इंतजार कर रही देश की महिलाएं अब अपना हक पाने के लिए तैयार हैं। सदन में चर्चा जारी है। इससे पहले लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने विधेयकों को पेश करने के विरोध में मतदान की मांग की। मतपत्रों के इस्तेमाल के बाद अध्यक्ष ओम बिरला ने घोषणा की कि 251 मत पक्ष में और 185 मत विपक्ष में पड़े हैं। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने इनका विरोध करते हुए आरोप लगाया कि ये विधेयक देश के संघीय ढांचे को कमजोर करेंगे। गृहमंत्री ने कहा कि श्री वेणुगोपाल विधेयकों के प्रस्तुतीकरण पर तकनीकी आपत्तियां उठा सकते हैं, उनके गुण दोष पर नहीं बोल सकते। समाजवादी पार्टी सांसद अखिलेश यादव ने जल्दबाजी में विधेयक लाने की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले जनगणना होनी चाहिए।
महिला आरक्षण पक्ष में है, लेकिन जिस तरीके से और डिलिमिटेशन जनगणना ना होकर के 2011 को लेकर के, क्योंकि जनगणना होगी तो जाति जनगणना मांगी जाएगी, जाति जनगणना होगी तो सही आंकड़े आएंगे। अगर हम एक तिहाई बोल रहे हैं, 33% बोल रहे हैं, तो ये आंकड़े का सवाल है ना, तो आंकड़ा कैसे सही होगा? अगर जब तक आंकड़ा सही नहीं होगा तो हम आरक्षण कैसे सही बताएंगे?
तृणमूल कांग्रेस के काकोली घोष दस्तेदार ने कहा कि महिला आरक्षण को भविष्य के परिसीमन अभ्यास पर निर्भर बनाया जा रहा है। श्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ने जाति जनगणना कराने का निर्णय पहले ही ले लिया है।
सदन की कार्यवाही को पूरा देश देख रहा है। मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूँ, जनगणना का काम शुरू हो चुका है। सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है।
महिला आरक्षण विधेयक पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक विधेयक है। लोकसभा में भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और 2029 के लोकसभा चुनावों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 33% होगा। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री पाल ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल परिसीमन विधेयक को लेकर देश को गुमराह कर रहे हैं।
आज उस नारी शक्ति वंदन अधिनियम को अगर लागू करने के लिए हमने इसको किया है और 2011 का संशोधन लेके आ रहा है कि जिससे 29 तक इसको लागू हो जाए। डिमिलिटरिजेशन पे एक कमीशन बनेगा और वो राज्यों के हिसाब से प्रोपोर्शनेट बनेगा, इसके बावजूद गुमराह कर रहे हैं।
राज्यसभा में भाजपा सांसद मेधा कुलकर्णी ने कहा कि महिला आरक्षण विधेयक विकासशील भारत में महिलाओं की शक्ति सुनिश्चित करता है।
ऐतिहासिक क्षण होगा ये संसद भवन के लिए, पूरे राजनीति के लिए, और जैसे कि आदरणीय मोदी जी ने कहा कि विकसित भारत में मातृशक्ति का सहभाग हो उसका सुनिश्चितीकरण किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत खुशी की बात।
भाजपा सांसद संध्या राय ने देश की मातृशक्ति की ओर से प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय से और पूरे देश की मातृशक्ति मेरी बहनों माताओं की तरफ से हृदय से आभार उनका अभिनंदन करती हूं। और देश की नारी शक्ति के लिए आज का दिन ऐतिहासिक पल है। मुझे लगता है 2029 का जो चुनाव लोकसभा का आएगा, पूरे देश की हमारी जो नारी शक्ति है उसको प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण विधेयक पर आज दोपहर बाद 3 बजे लोकसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र को अधिक जीवंत और सहभागी बनाने के लिए विधायी निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस आरक्षण को लागू करने में किसी भी प्रकार की देरी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगी। श्री मोदी ने कहा कि दशकों से पिछली सरकारों द्वारा लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं को उनका उचित स्थान दिलाने के लिए बार बार प्रयास किए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। यूजीसी ने कहा है कि इन पहलों से लैंगिक समानता, संवैधानिक मूल्यों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं के समान प्रतिनिधित्व के महत्व पर सार्थक संवाद को बढ़ावा मिल रहा है। राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। सदन ने कांग्रेस की पूर्व नेता मोहसिना किदवई और प्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले के निधन पर शोक भी व्यक्त किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि आशा भोसले भारत के सबसे प्रतिष्ठित और बहुमुखी पार्श्व गायिकाओं में से एक हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने संगीत और सिनेमा जगत में अपना एक अनूठा मुकाम हासिल किया। बाद में सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में भी दिग्गज पार्श्व गायिका आशा भोसले को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ऑस्ट्रिया के चांसलर डॉ क्रिश्चियन स्टॉकर के साथ वार्ता की। बैठक के दौरान भारत और ऑस्ट्रेलिया ने कई समझौतों और दस्तावेजों का आदान प्रदान किया। इनमें खाद्य सुरक्षा से जुड़ा समझौता ज्ञापन, सहयोग और सैन्य मामलों तथा आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त कार्य समूह से जुड़े आशय पत्र शामिल हैं। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रिया अवसंरचना तथा नवाचार में भरोसेमंद सहभागी रहे हैं। श्री मोदी ने श्री स्टॉकर द्वारा यूरोप से बाहर अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुनने पर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच युवा संपर्क को बढ़ावा देने के लिए भारत ऑस्ट्रिया वर्किंग हॉलीडे प्रोग्राम भी शुरू हो रहा है।
हम ऑस्ट्रिया की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को जोड़कर पूरे विश्व के लिए रिलायबल टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन सुनिश्चित करेंगे। हम डिफेंस, सेमीकंडक्टर, क्वांटम और बायोटेक्नोलॉजी में भी अपनी पार्टनरशिप को सुदृढ़ करेंगे। साथ ही हम इंजीनियरिंग और टेक्निकल एजुकेशन सहयोग को भी और मजबूत करेंगे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद को मिलकर समाप्त किया जा सकता है।
आज पूरा विश्व एक बहुत ही गंभीर और तनावपूर्ण स्थिति में गुजर रहा है। ऐसे तनावपूर्ण वैश्विक माहौल में भारत और ऑस्ट्रिया हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से समस्याओं का समाधान नहीं निकल सकता। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम एक स्टेबल, सस्टेनेबल और लास्टिंग पीस का समर्थन करते हैं। आतंकवाद को जड़ से मिटाना हमारी साझी प्रतिबद्धता है।
ऑस्ट्रिया के चांसलर डॉक्टर क्रिश्चियन स्टॉकर ने भारत की अपनी यात्रा को दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ से बाहर ऑस्ट्रिया के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदारों में से एक है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले 10 वर्ष में बढ़कर लगभग 3 अरब यूरो हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आज उनके और ऑस्ट्रिया के चांसलर डॉक्टर क्रिश्चियन स्टॉकर के बीच अत्यंत सार्थक चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर स्टॉकर की पदभार संभालने के बाद यूरोप के बाहर पहली यात्रा है जो भारत ऑस्ट्रिया संबंधों के प्रति उनके दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत घर घर जाकर मकानों का सूचीकरण और मकानों की गणना का काम आज से शुरू हो गया है। यह अभियान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, कर्नाटक, लक्षद्वीप, मिजोरम, ओडिशा, सिक्किम, नई दिल्ली नगरपालिका और दिल्ली छावनी बोर्ड के क्षेत्रों में आज से हो रहा है। यह अभियान 15 मई तक चलेगा। इस दौरान प्रगणक घर घर जाकर लोगों से आंकड़े जुटाएंगे। गृह मंत्रालय ने बताया है कि पहली बार शुरू की गई स्वगणना सुविधा से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। लगभग 12 लाख परिवारों ने सफलतापूर्वक अपनी जानकारी ऑनलाइन जमा की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
गृह मंत्रालय के अनुसार जनगणना के लिए पहली बार डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाउस लिस्टिंग चरण के दौरान गणनाकर्मी 33 प्रश्नों वाले एक निर्धारित प्रश्नावली के माध्यम से मकानों की स्थिति, परिवार से जुड़ी जानकारी, उपलब्ध सुविधाओं और संपत्तियों का विवरण एकत्र करेंगे। मंत्रालय ने साथ ही बताया कि स्वयं गणना की सुविधा आज आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी शुरू की जा रही है। इन राज्यों में फील्ड कार्य अगले महीने की 1 से 30 तारीख तक चलेगा। वहीं बिहार में स्वयं गणना इस महीने की 17 तारीख से शुरू होकर 1 मई तक चलेगी, जिसके बाद 2 मई से 31 मई तक घर घर जाकर गणना का कार्य किया जाएगा। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि जनगणना अधिनियम 1948 के तहत एकत्र की गई जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहेगी और इसका इस्तेमाल केवल सांख्यिकीय और विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। भानु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @XHIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में आज तड़के एक सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में मरने वालों के प्रति शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर है। सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेता प्रचार में जुटे हैं। आकाशवाणी समाचार के विधानसभा चुनाव निर्वाचन क्षेत्र प्रोफाइल श्रृंखला में आज बात तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में स्थित विधानसभा क्षेत्र कोयम्बटूर उत्तर की।
इस जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 26,96,813 है। वहीं कोयम्बटूर उत्तर की जनसंख्या 2,91,533 है। भाजपा नेता वंथी श्रीनिवासन इस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं। वे भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। 2021 के चुनावों में उन्होंने अभिनेता कमल हासन को 1,728 वोटों के अंतर से हराया था। डीएमके ने डी सेंथमिल सेल्वन को मैदान में उतारा है। टीवीके ने वी संपत कुमार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि एनटीके ने नर्मदा निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार उतारा है। इस निर्वाचन क्षेत्र में एआईए डीएमके 3 बार जीत चुकी है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महिला आरक्षण और परिसीमन पर केंद्रित संसद का विशेष सत्र शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर बाद लोकसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 और परिसीमन विधेयक 2026 पेश। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में ऑस्ट्रिया के चांसलर डॉक्टर क्रिश्चियन स्टॉकर के साथ दोनों देशों के बीच व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत मकानों का सूचीकरण और गणना का काम आज से शुरू। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।